एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम बात करने वाले हैं स्टीफन हॉकिंग की बहुत ही मशहूर किताब द यूनिवर्स इन अ नटशेल के बारे में।
हाँ, नटशेल में ब्रह्मांड, you know, ये वो किताब है जो ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े, सबसे मुश्किल सवालों से जूझती है।
बिल्कुल। और मुझे लगता है आज के समय में जहाँ इतनी इन्फॉर्मेशन है, ये समझना कि हम कहाँ से आए, ये सब क्या है, ये शायद और भी जरूरी हो गया है।
सही बात है। और ये किताब दिखाती है कि कैसे साइंस उन दरवाजों पर दस्तक दे रही है जो कभी सिर्फ फिलॉसफी के लिए थे।
हाँ, जैसे समय की शुरुआत कैसे हुई, असलियत क्या है, और इस बड़े से ब्रह्मांड में हमारी जड़ा क्या है ना?
हाँ, सोचने पर मजबूर करती है, बिल्कुल। तो चलिए पहले उस इंसान की बात करते हैं जिन्होंने हमें ये सब सोचने पर मजबूर किया, स्टीफन हॉकिंग।
स्टीफन हॉकिंग मतलब एक ऐसा नाम जो मॉडर्न साइंस का दूसरा नाम बन गया 1942 से 2018 तक।
हाँ, और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में।
हाँ, वो लोकेशन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स थे, जो कभी न्यूटन के पास थी वो पोस्ट।
एग्जैक्टली। और सोचिए ये सब तब जब सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्हें मोटर न्यूरॉन डिजीज मतलब ALS हो गया था।
वो बीमारी जिसने धीरे धीरे उनके शरीर को मतलब चलने फिरने से रोक दिया, पर दिमाग वो तो और तेज हो गया शायद।
बिल्कुल, शायद उनकी फिजिकल लिमिटेशंस ने ही उन्हें यूनिवर्स के बारे में और गहराई से और विजुअली सोचने पर मजबूर किया हो।
हाँ, जैसे ब्लैक होल्स पर उनका काम, वो हॉकिंग रेडिएशन वाली बात तो कमाली थी।
हाँ, और उनकी पहली किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो तो मतलब दुनिया भर में छाई रही।
उन्होंने साबित कर दिया कि साइंस के मुश्किल से मुश्किल आइडियाज भी आम लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। सही, उनमें वो कॉम्बिनेशन था जबरदस्त, वैज्ञानिक समझ, एकदम हटके सोच और उसे आसान भाषा में बताने का टैलेंट। और वही बात द यूनिवर्स इन अ नटशेल में भी दिखती है।
तो ये किताब द यूनिवर्स इन अ नटशेल, ये है किस बारे में? मतलब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के बाद इसमें क्या खास है?
इसे आप उसका सीक्वल या एक्सटेंशन समझ सकते हैं, जो भी नई खोजें हुई उस दशक में, खासकर फिजिक्स में, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह।
अच्छा।
उन सबको ये कवर करती है और मकसद वही है, मॉडर्न फिजिक्स की जो कटिंग एज चीजें हैं उन्हें आम पाठक तक पहुंचाना बिना भारी भरकम मैथ्स के।
तो अगर इसके मेन आइडियाज पकड़ने हो तो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से तीन मोटी मोटी बातें हैं। पहली, कि हम शायद एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बहुत करीब हैं, मतलब एक ऐसा नियम जो यूनिवर्स में सब कुछ समझा दे।
सब कुछ, छोटे से एटम से लेकर बड़ी गैलेक्सी तक।
हाँ बिल्कुल। और हॉकिंग का मानना था कि स्ट्रिंग थ्योरी या एम थ्योरी जो है वो हमें उस तरफ ले जा रही है।
एम थ्योरी ये क्या चीज है, इस पर आते हैं अभी। और दूसरी बात
ये कि असलियत मतलब रियलिटी हमारी रोज की समझ से कहीं ज्यादा अजीब है, स्ट्रेंज है, क्वांटम मैकेनिक्स की वो अनिश्चितता वाली दुनिया।
हाँ।
और आइंस्टाइन की रिलेटिविटी का वो स्पेस टाइम का ताना बाना, ये दोनों मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो थोड़ी धुंधली है, मिस्टीरियस है, खासकर जब टाइम की बात आती है।
और तीसरा पॉइंट?
तीसरा है हमारा अपना मकाम, इस यूनिवर्स में हमारी जगह क्या है और हमारा फ्यूचर क्या है, क्या और डायमेंशंस हैं, क्या टाइम ट्रैवल हो सकता है, और सबसे जरूरी सवाल, इंसानियत का क्या होगा। ये किताब इन सब सवालों से टकराती है।
चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं इन आइडियाज के। शुरू करते हैं उस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग से। इसके लिए तो आइंस्टाइन और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों को समझना पड़ेगा, है ना?
बिल्कुल। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ने हमें बड़े स्केल पर यूनिवर्स समझाया, ग्रेविटी कैसे काम करती है, स्पेस और टाइम कैसे जुड़े हैं, स्पेस टाइम, और वो फेमस E=mc².
एनर्जी और मैटर एक ही चीज है।
सही,
वो एक तरह से यूनिवर्स का एक बड़ा नक्शा था।
लेकिन फिर आई क्वांटम मैकेनिक्स जिसने छोटे लेवल पर सब गड़बड़ कर दिया।
हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि बहुत छोटे लेवल पर चीजें फिक्स नहीं होती, सब कुछ प्रोबेबिलिटी संभावना पर चलता है। एक पार्टिकल एक ही टाइम पर कई जगह हो सकता है।
अरे
हाँ, रिचर्ड फैनमैन का वो सम ओवर हिस्ट्रीज वाला आइडिया याद है?
हाँ सुना है, मतलब एक कण ए से बी जाने के लिए सारे रास्ते एक साथ लेता है।
एग्जैक्टली। ये सुनने में कितना अजीब है ना?
हाँ यार,
जैसे हमारी दुनिया सॉलिड है ही नहीं, बस संभावनाओं का जाल है। और इन्हीं दोनों दुनियाओं को, क्वांटम और आइंस्टाइन वाली, मिलाने की कोशिश ही थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है।
बिल्कुल सही। और यहीं पर आती है स्ट्रिंग थ्योरी और फिर एम थ्योरी, ये थियोरीज कहती हैं कि मैटर के जो सबसे बेसिक कण हैं वो पॉइंट जैसे नहीं हैं,
तो फिर
वो छोटे छोटे वाइब्रेट करते हुए स्ट्रिंग या धागे जैसे हैं, जैसे गिटार का तार।
अच्छा, जैसे गिटार के तार से अलग अलग सुर निकलते हैं, वैसे ही इन स्ट्रिंग्स के अलग अलग वाइब्रेशन से अलग अलग पार्टिकल बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स, सब।
हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और मजे की बात यह है कि ये थ्योरी कहती है कि इन स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करने के लिए हमारे जाने पहचाने 3 स्पेस डायमेंशन और 1 टाइम डायमेंशन काफी नहीं है।
तो कितने चाहिए?
10 या 11 डायमेंशन।
11? हम तो सिर्फ 3 स्पेस डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई महसूस करते हैं, बाकी के 7-8 कहां गए?
हो सकता है वो इतने छोटे हों, इतने ज्यादा मुड़े हुए कि हमें दिखते ही नहीं। या फिर एक और जबरदस्त आइडिया है एम थियरी में, ब्रेन का कॉन्सेप्ट।
ब्रेन मेम्ब्रेन से?
हाँ, सोचिए कि हमारा पूरा यूनिवर्स, हमारा 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम एक पतली सी झिल्ली या ब्रेन जैसा है, और ये ब्रेन एक ज्यादा डायमेंशन वाले स्पेस में तैर रहा है, उसे बल्क कहते हैं, जैसे पानी पर पत्ता तैरता है।
शायद किसी और बड़ी मल्टी डायमेंशनल रियलिटी के अंदर एक छोटी सी चीज है, एक नटशेल जैसा।
बिल्कुल, ये एक पॉसिबिलिटी है। और यहीं से हम दूसरे बड़े थीम पर आते हैं, रियलिटी और टाइम की वो अजीब सी नेचर।
हाँ, टाइम, आइंस्टाइन ने तो कहा ही था कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, वो स्पीड और ग्रेविटी से बदलता है। पर हॉकिंग इसे और आगे ले गए ना, वो इमेजिनरी टाइम का क्या कॉन्सेप्ट था?
हाँ, काल्पनिक समय या इमेजिनरी टाइम, ये बेसिकली एक मैथमेटिकल ट्रिक है जिससे टाइम को स्पेस के डायमेंशंस जैसा ट्रीट किया जा सकता है। सुनने में अजीब है, पर
इसका फायदा क्या?
इसका इस्तेमाल करके हॉकिंग ने अपना फेमस नो बाउंड्री प्रपोजल दिया।
नो बाउंड्री, कोई सीमा नहीं, मतलब
ये कि अगर हम इमेजिनरी टाइम में देखें तो यूनिवर्स की कोई शुरुआत या कोई किनारा है ही नहीं। जैसे पृथ्वी की सतह है, आप चलते जाइए, कोई एज नहीं मिलेगा, ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है।
अरे वाह।
हॉकिंग कहते हैं यूनिवर्स भी ऐसा ही हो सकता है, फाइनाइट पर बिना किसी बाउंड्री के। इससे वो सवाल ही खत्म हो जाता है कि बिग बैंग से पहले क्या था।
ये तो कमाल है, इसने तो टाइम की शुरुआत वाले सवाल को ही साइडलाइन कर दिया। अच्छा, और ब्लैक होल्स का क्या? वहां भी तो टाइम और रियलिटी एकदम अजीब हो जाते हैं।
ब्लैक होल तो मतलब रहस्यों का गढ़ है, एक बड़ा सवाल था इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स।
हाँ, कि जो चीज ब्लैक होल में गिरती है उसकी इन्फॉर्मेशन का क्या होता है, क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है?
एग्जैक्टली। अगर हाँ तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के रूल तोड़ता है जो कहता है इन्फॉर्मेशन कभी नष्ट नहीं होती।
तो हल क्या निकला?
एक पॉसिबल हल है होलोग्राफिक प्रिंसिपल।
होलोग्राफिक प्रिंसिपल, जैसे होलोग्राम होता है?
हाँ, ये कहता है कि इन्फॉर्मेशन नष्ट नहीं होती बल्कि ब्लैक होल की जो बाउंड्री है इवेंट होराइजन उस पर एक तरह से इनकोड हो जाती है, जैसे किसी 3D होलोग्राम की सारी जानकारी उसकी 2D सतह पर होती है।
ओह, मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड की चिप पर सारी इन्फॉर्मेशन होती है वैसे। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी जो 3D दुनिया है ये भी किसी दूर की 2D सतह पर एनकोडेड इन्फॉर्मेशन का बस एक प्रोजेक्शन हो सकती है?
ये प्रिंसिपल इसी तरफ इशारा करता है कि शायद रियलिटी उतनी सॉलिड नहीं है जितनी हमें लगती है। कमाल है ना?
हाँ, बिल्कुल कमाल है। और ये सब हमें तीसरे थीम की तरफ ले जाता है हमारा, फ्यूचर और टाइम ट्रैवल वगैरह।
हाँ, टाइम ट्रैवल, क्या हम सच में पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं?
थ्योरेटिकली आइंस्टाइन की थ्योरी वॉर्म होल की बात करती है, स्पेस टाइम में शॉर्टकट।
हाँ, सुना है फिल्मों में, पर वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का क्या? अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को दादी से मिलने ही न दें तो आप कैसे पैदा होंगे?
सही सवाल। ये तो लॉजिक का चक्कर है। हॉकिंग का मानना था कि शायद नेचर खुद ऐसे पैराडॉक्स को रोकती है। उन्होंने क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर दिया।
क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन मतलब इतिहास खुद को बचाता है। हाँ, एक तरह से कि शायद फिजिक्स के नियम ही ऐसा कुछ करते हैं कि टाइम ट्रैवल नामुमकिन हो जाए या वॉर्म होल बनती ही तबाह हो जाए।
इंटरेस्टिंग। तो अगर टाइम ट्रैवल मुश्किल है तो फ्यूचर क्या है हमारा, इंसानों का?
यहीं पर हॉकिंग सीधे हम पर फोकस करते हैं। वो वार्निंग देते हैं न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज, कोई नया वायरस, ये सब हमारे वजूद को मिटा सकते हैं।
वो जेनेटिक इंजीनियरिंग और AI की भी बात करते हैं ना, उसके फायदे और खतरे दोनों।
बिल्कुल। तो सवाल उठता है, क्या कोई उम्मीद है?
क्या कहते हैं वो?
उनकी उम्मीद स्पेस में थी। वो मानते थे कि इंसानियत को अगर लंबा चलना है तो हमें मल्टी प्लानिटरी स्पीशीज बनना होगा, मतलब पृथ्वी के अलावा और ग्रहों पर भी बसना होगा।
स्टार ट्रेक वाला फ्यूचर?
हाँ, कुछ वैसा ही।
वाह, तो इतनी सारी बातें हुई, अगर इस किताब के सबसे जरूरी टेकअवेज या संदेश निकालने हो तो क्या होंगे?
यही है कि खोज जारी है, हम यूनिवर्स के नियमों को समझने के बहुत करीब हो सकते हैं। वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग शायद मुमकिन है, M थ्योरी इसमें अहम हो सकती है।
ठीक है, दूसरा?
दूसरा कि रियलिटी वाकई बहुत अजीब है, हमारी कॉमन सेंस से एकदम परे। काउड स्पेस टाइम, क्वांटम अनिश्चितता, एक्स्ट्रा डायमेंशंस, होलोग्राफिक प्रिंसिपल, हमें अपना दिमाग खुला रखना होगा।
चीजों को एक्सेप्ट करना होगा जो शायद अजीब लगे।
एग्जैक्टली।
तीसरा,
टाइम का रहस्य, ये सीधा नहीं बहता, शायद इसकी कोई शुरुआत नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, ये टाइम को देखने का नजरिया बदलता है।
और चौथा?
चौथा शायद सबसे अहम, हमारी अपनी जगह और जिम्मेदारी। हम इस बड़े यूनिवर्स में बहुत छोटे हो सकते हैं पर हम इसे समझ सकते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है, और इस समझ का इस्तेमाल हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करने में करना चाहिए।
आपने कहा रियलिटी अजीब है और दिमाग खुला रखना होगा। मुझे लगता है ये बात तो हमारे यहाँ इंडिया में रोज की जिंदगी में भी लागू होती है।
कैसे?
जैसे हम कई बार चीजों को बस मान लेते हैं, है ना, कोई परंपरा हो, कोई पुरानी सोच। ये किताब याद दिलाती है कि सवाल पूछना, चीजों को अलग नजर से देखना कितना जरूरी है। शायद ये हमें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखने में हेल्प करे।
हाँ, सही कहा। जैसे ट्रैफिक जैम में फंसकर लगता है दुनिया खत्म, पर यूनिवर्स के स्केल पर सोचो तो।
हाँ, वो कितनी छोटी सी बात लगती है, एक तरह की ह्यूमिलिटी आती है।
हाँ। अच्छा, किताब में कुछ कोट्स या यादगार विचार भी तो हैं?
हाँ बिल्कुल। एक है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडैप्ट टू चेंज, मतलब बुद्धिमत्ता बदलाव के साथ ढल जाने की काबिलियत है।
ये तो आज के जमाने के लिए एकदम फिट बैठता है।
सब कुछ कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी, समाज, हमें लगातार सीखना और बदलना पड़ रहा है।
बिल्कुल, हॉकिंग के लिए यही असली इंटेलिजेंस थी। एक और जो मुझे बहुत पसंद है, हम एक औसत तारे के एक छोटे ग्रह पर बंदरों की एक उन्नत नस्ल मात्र हैं, लेकिन हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, ये हमें कुछ बहुत खास बनाता है।
ये कमाल का है, एक तरफ हमारी मामूली हैसियत और दूसरी तरफ हमारी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षमता, ये हमें हमारी कीमत याद दिलाता है बिना घमंड के।
सही। और फ्यूचर पर उनका वो बयान, मुझे नहीं लगता कि मानव जाति अगले 1000 साल तक जीवित रहेगी, जब तक कि हम अंतरिक्ष में नहीं फैल जाते, लेकिन मैं आशावादी हूँ हम सितारों तक पहुँचेंगे।
ये एक वार्निंग भी है और एक उम्मीद भी। प्रॉब्लम भी बताई, सोल्यूशन भी, और उस पर भरोसा भी।
हाँ, ये हमें लॉन्ग टर्म सोचने पर मजबूर करता है।
तो ये सब इतने गहरे थियोरेटिकल आइडियाज, इनका हमारी डेली लाइफ से क्या कनेक्शन है? कोई प्रैक्टिकल यूज है?
अरे हाँ, कई तरह से। पहली बात तो ये कि यही क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी जैसी थ्योरीज हैं जिनकी वजह से आज हमारे पास GPS है, लेजर है, MRI मशीन है, कंप्यूटर चिप्स हैं।
अच्छा हाँ, ये तो है।
और आगे भी इनसे नई टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं। सोचो, क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह।
और सोचने के लेवल पर,
जैसा हमने कहा, यूनिवर्स की विशालता को समझना हमें अपनी रोज की टेंशन और झगड़ों को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखने में मदद कर सकता है। शायद थोड़ी कम चिंता, थोड़ा ज्यादा वॉन्डर।
हाँ, और वो अनिश्चितता वाली बात, क्वांटम मैकेनिक्स तो कहती ही है सब कुछ अनिश्चित है।
बिल्कुल, लाइफ में, बिजनेस में, रिश्तों में अनसर्टेनिटी तो रहती है, उसे एक्सेप्ट करना शायद हमें ज्यादा फ्लेक्सिबल और शांत बना दे।
और ये हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी इंस्पायर करता है, क्लाइमेट चेंज, स्पेस एक्सप्लोरेशन, जैसा हॉकिंग ने कहा।
हाँ, और साइंटिफिक टेम्परमेंट बढ़ाना भी जरूरी है ताकि हम फेक न्यूज के जमाने में सही फैसले ले सकें।
सही बात। और एक चीज और, हॉकिंग जिस तरह मुश्किल चीजों को आसान एनालॉजी से समझाते थे, वो खुद एक कम्युनिकेशन स्किल है सीखने लायक।
बिल्कुल।
तो इस पूरी बातचीत के बाद आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे हैरान करने वाली बात क्या रही इस किताब से?
और मेरे लिए शायद सबसे हैरान करने वाली बात ये होलोग्राफिक प्रिंसिपल और एक्स्ट्रा डायमेंशन वाली बात है। मतलब रियलिटी कितनी कितनी अलग हो सकती है हमारी समझ से। लगता है हम वाकई एक नटशेल में हैं और बाहर कितना कुछ है जानने को।
और हॉकिंग का ऑप्टिमिज्म, उनकी मुश्किलों के बावजूद वो बहुत इंस्पायरिंग है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख शायद ये है कि सवाल पूछना कभी बंद नहीं करना चाहिए। ये यूनिवर्स समझने लायक है और उसे समझने की कोशिश करना ही शायद इंसान होने का मतलब है। वो नो बाउंड्री प्रपोजल जैसा आइडिया दिखाता है कि कैसे एक नया नजरिया पुराने सवालों को खत्म कर सकता है। ये किताब वाकई दिमाग की बत्ती जला देती है।
हाँ, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी कितनी कीमती है ये याद दिलाती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।